ओम शांति। सभी भट्टी वालों को आनंददायक हो। बहुत तो पहली बार यहाँ कर रहे होंगे मधुबन में। गीत बहुत अच्छा बजाया। क्या था? बाबा ने हमें अपना बनाकर क्या दिया? बहुत सुख दिया। मिला है सभी को सुख? और चाहिए? मेरा क्लास, मैं थोड़ा रेस्ट में था इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। हमें इतना सुख चाहिए बाबा से कि हम संसार के दुखों को हर सकें, क्योंकि संसार में दुख बढ़ते जा रहे हैं। लगता है आपको? हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, पर आपको पता चलता होगा कि संसार में दुख बहुत बढ़ते जा रहे हैं। विशेष दुख संबंधों में। कोई झुकने को तैयार नहीं। मैं बड़ा, मैं राइट। इसने संबंधों का सुख छीन लिया है। दूसरी चीज एक जो संसार में बढ़ती जा रही है, जो आप सबको पता होना चाहिए, मानसिक रोग, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, अलग अलग नाम देते हैं डॉक्टर लोग उन मन के रोगों के। बहुत ही ऐसे ऐसे समाचार मिलते हैं जो पहले कभी नहीं सुने थे। 13 साल की कन्या है, ब्रेन है ही नहीं, 13 साल हो गए उसको संभालते, न उसे ये पता वो मनुष्य भी है क्या, उसे खाना भी है क्या, नहाना भी है क्या, कुछ पता नहीं उसे। अति पाप कर्मों की सजा है ना, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके मुख्य सब्जेक्ट पर, सबका प्रिय सब्जेक्ट है वो, और वो है एकाग्रता। किसी ने चर्चा की भी हो भट्टी में, संडे की मुरली थी, याद है संडे की मुरली? एकाग्रता इस सारे संसार के लिए ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें घंटों घंटों बातें की जा सकती हैं। विद्यार्थी पढ़ने में एकाग्र नहीं, बाबा के बच्चे कहाँ एकाग्र नहीं, मुरली में भी एकाग्र नहीं। आप सोचते होंगे मैं भी याद ही कहूंगा। याद में तो एकाग्रता सबकी अलग अलग है ही, लेकिन हमें संपूर्ण सुख तब मिलता है बाबा से जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाए। जीवन का सुख ही इस बात पर है कि हम एकाग्र हो जाएं। किसी भी फील्ड में सफलता इसी बात पर है। बाबा ने बहुत अच्छी कुछ बातें कही मुरली में, सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएं, उस पर अधिकार हो जाए, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। आप में से कोई इस पे कभी सोचते होंगे, सब तो इस पे सोचते भी नहीं। हम सर्व शक्तियों के मालिक बन जाएं, हम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक बन जाएं, हम अपने मालिक बन जाएं। विनाश काल में ऐसी एकाग्रचित आत्माएं जिन्होंने अपने पर राज कर लिया है, वे प्रकृति पर भी राज करेंगे। तो एक बहुत सुंदर चैलेंज हमारे सामने होता है कि हम अपने चित्त को एकाग्र करें। क्या करें इसके लिए? हम बहुत प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं, सार में। पहली बात, मनुष्य के मन को किस किसने भटकाया है, सबको अनुभव है रोज। कौन सी बातें भटकाती हैं हमारे मन को, बोलो। पांचों विकार, व्यर्थ चिंतन, बोलते जाओ। बस नहीं, व्यर्थ संकल्पों के कारण बताएंगे आप। मानस्यान की इच्छा, यह है परफेक्ट उत्तर, बोलो। ठीक है, ये चाहिए ये चाहिए, देवान से उत्तर नहीं निकलता, ये चाहिए ये चाहिए। क्या चाहिए माताओं को, क्या चाहिए? नहीं, मान चान माताओं को तो कम चाहता है, वो भाइयों की समस्या है। माताओं को क्या चाहिए? माताएं ठीक बोल रही हैं, मातृ शक्ति का आकर्षण है वस्तु और वैभव। बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने की आदत, अब से हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने लिख दिया, जिसमें अपरिग्रह नहीं है, संस्कृत का शब्द है अपरिग्रह, इकट्ठा करने की आदत नहीं है, वही मनुष्य संतुष्ट है, वही योगी बन सकता है। और जिसमें बहुत इच्छाएं हैं इकट्ठा करने की, वो योगी नहीं बन सकता। जिसको बाबा ने कहा, जो बेगर बनेंगे वही प्रिंस बनने से पहले योगी बनेंगे। जो यहां सब कुछ छोड़ दे, हम जब बाबा के पास आए तो गीत बजा करता था, तब तो बाहर के गीत होते थे, कौन सा गीत है मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें शब्द थे, जो अपना सब कुछ छोड़ चला उसने ही तुझको पाया है। आया किसी को गीत याद? बहुत अच्छे शब्द थे, ये शब्द मुझे अट्रैक्ट करते थे कि जब तक मनुष्य सब कुछ त्याग न कर दे, वो बाबा से सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और कौन सी चीज मनुष्य को भटकाती है, अब ग्रस्त में पहुंच जाओ। अरे मोह तो भारी चीज है, उसको छोड़ो, पहले और बात सुनो। मोह की चर्चा हम करते हैं तो माताओं के चेहरे उदास हो जाते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करता, आगे किया करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चिंताएं, बहुत सारी कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं अलग चीज है, कुछ इच्छाएं तृष्णाओं में बदलती हैं। तृष्णा माना ऐसी इच्छा जो कभी पूर्ण नहीं होगी, उसको तृष्णा कहते हैं, जिसके पीछे मनुष्य भागता रहता है। ये हिरण के लिए शब्द प्रस्तुत प्रयुक्त किया जाता है, हिरण पानी की तलाश में, उसको रेगिस्तान में दिखता है वहां पानी है, वो चमक दिखती है ना, वहां है, फिर भागा जाएगा, फिर आगे है वहां भागेगा, है ही नहीं। ऐसी इच्छाएं जो कभी पूर्ण ही नहीं होंगी तृष्णाएं कहलाती हैं, ये मनुष्य के मन को बहुत भटकाती हैं। कोई भी विकार, किसी को अहंकार भटका रहा है, किसी को क्रोध भटका रहा है, हर विकार, चाहे मोह हो, और आजकल कलयुग के अंत में बहुत ज्यादा भटका रहा है मनुष्य को लोभ। विदेशी लोग हमें बताते हैं कि हमारे देशों में लोभ नहीं होता था, लोग बड़े ऑनेस्ट ईमानदार होते थे, अब लोभ चारों ओर दिखाई देता है। हर व्यक्ति सोचता है अधिक से अधिक धन हो जाए, चाहे धन कैसे भी प्राप्त किया जाए, किसी को मार के धन छीना जाए, लेकिन धन होना चाहिए, धन के बिना सुख नहीं है। और धन क्या करेगा, मनुष्यों को रोते हुए छोड़ जाएगा, तो जिस धन को इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा दिया वो तो काम ही नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाएंगी, दबे पड़े रहेंगे, धन दिखाई देगा, उधर है, जा भी नहीं सकते, अलमारियां भरी हुई हैं, लेकिन हम इधर दबे पड़े हैं, ये सब होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले यदि कोई संभल जाए कि सुख धन में नहीं, सुख तो एकाग्रता में है, याद में हम एकाग्र हो जाएं। माताएं बच्चों के लिए बहुत चिंतित होती हैं, माताएं फोन करती हैं मुझे, मेरी लड़की 10 साल की ये पढ़ती नहीं है, मुझे बहुत चिंता है, इसका भविष्य क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। माताएं फोन करती हैं, मेरी लड़की समर्पित हो गई है, मुझे उसकी बहुत चिंता है, उसे कौन संभालेगा। क्या होना चाहिए? एकाग्र चित्त होने के लिए बहुत बड़े ज्ञान के बल की जरूरत रहती है। और सबसे पहली चीज, संपूर्ण एकाग्र वही हो सकते हैं। अब हम योग की बात करें, केवल योग में संपूर्ण एकाग्र हो जाएं, किसी बाबा के अलावा कुछ दिखाई ना दे। सूक्ष्म लोक में रहना चाहें तो जितना समय रहना चाहें रहें, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना चाहें जितना समय चाहें कर सकें, बाबा के सब मन बुद्धि को जहां चाहो जितना समय चाहो जिस स्वरूप पर चाहो लगा सको, यह है संपूर्ण एकाग्रता। और सुंदर शब्द सुन लें, जिनके पास ये कला होगी उनके पास बाकी कलाएं स्वतः ही आ जाएंगी। ऐसी एकाग्रता के लिए चाहिए, आप में से जो भी इस सब्जेक्ट पर काम करना चाहें उसके लिए चाहिए संपूर्ण प्योरिटी। जितनी प्योरिटी अच्छी होती जाएगी, चित्त एकाग्र होता जाएगा। मैं दूसरी बात कह दूं, उदाहरण दे के समझा रहा हूं। मुझे माताएं इस बारे में भी ज्यादा फोन करती हैं, भाई जी मुरली याद नहीं रहती, साथ साथ भूल जाती है हमें तो। मैं हंसी में उन्हें कहा करता हूं, जो थोड़ी समझदार हैं पढ़ी लिखी, कि तुम्हारा मेमोरी कार्ड फुल हो गया है, इतना माल भरा है इधर कि उसमें भगवान के बैठने की भी जगह नहीं छोड़ी। ज्ञान तो छोड़ो, भगवान भी नहीं बैठ सकता। किसने एकाग्रता को भंग किया? इधर बहुत माल भर लिया दिमाग में, बुद्धि। बुद्धि जो हमारा पात्र है, याद रखेंगे बुद्धि धारणा शक्ति है, बुद्धि ही विवेक शक्ति है, बुद्धि हमारा थर्ड आई है, तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि सुंदर पात्र है। इसमें बाबा के ज्ञान को धारण करना है, स्वयं भगवान को धारण करना है, इसमें सर्व शक्तियां और वरदानों को धारण करना है, इसमें ये सुख शांति पवित्रता गुण सब धारण बुद्धि में होते हैं। सब ख्याल में ले आए, जो भी धारणाएं हम करेंगे उसका स्थान है, क्या स्थान है बोलो जोर से,
बुद्धि।
उस अनुसार मन चलता है। तो बुद्धि को जिसने स्वच्छ करना सीख लिया ज्ञान लेकर, वही बुद्धिमान है, वही सच्चा ज्ञानी है, जिसने अपनी बुद्धि के पात्र को ये सब भरने के लिए स्वच्छ कर लिया हो। इसलिए एकाग्रता उनकी ही होगी जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया। अब इस बुद्धि में किसी के लिए ईर्ष्या रख लिए तो बाबा याद आएगा या वो आत्मा? याद करने बैठेंगे बाबा को, याद आएंगी आत्माएं, और फिर कहेंगे पता नहीं हमारा तो योग ही नहीं लगता। बुद्धि में भर लिया हो किसी के लिए वैर भाव, बदला लेना है इससे, जब तक इससे बदला नहीं लेंगे चैन की नींद नहीं सोएंगे, प्रतिज्ञा कर ली हो, योग लगेगा वही याद आएगा, खुशी जाती रहेगी। मैंने जरा दूसरे शब्द बोले लेकिन सभी ध्यान दें, हर मनुष्य किसी से न किसी से बदला लेना अवश्य चाहता है। जब तक बदले की भावना कल्याणकारी भावना में नहीं बदली, शुभ भावनाओं में नहीं बदली, तब तक ये चित्त चैन नहीं पाएगा, एकाग्र नहीं होगा। स्वच्छ करें सब अपनी अपनी बुद्धि को, ये सबको खुद करना है, ये कोई और नहीं करेगा। कईयों ने तो ऐसा कर लिया है कि किसी ने अपने घर में झाड़ू लगा के कूड़ा एक थैली में भर के बाहर रख दिया और दूसरा दौड़ा गया वो कूड़ा उठा के अपने घर में रख लिया। दुनिया में कोई करता है ऐसा? लेकिन भगवान के बच्चे ये सुंदर काम भी करते हैं, समझ गए ना कैसे करते हैं। इसलिए वो गंदगी है, हमें इस बुद्धि, ये हमारी बुद्धि गंदगी के लिए नहीं। अपने को पढ़ाओ, मेरी बुद्धि एक योगी की बुद्धि है, सृष्टि की मैं महान आत्मा हूं, ये एक महान आत्मा की बुद्धि है, ये कूड़े और गंदगी के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है, ये उसके वरदानों के लिए है। बड़े बड़े काम करने हैं हमें, केवल घर नहीं संभालना, बड़े बड़े काम करने हैं। लक्ष्य दो अपने को, तो जो बुद्धि को स्वच्छ करे और जो मन में सुंदर विचार रखे वो स्थिर चित्त हो जाते हैं। आप में से तो किसी ने गीता नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी किसी ने गीता? तो आजकल के युवा पीढ़ी तो गीता का नाम भी नहीं जानते कि गीता है क्या। अर्जुन को ज्ञान दिया था युद्ध के मैदान में, उन्हें यह भी नहीं पता। और बड़ों को भी तब पता चला जब महाभारत की सीरियल चली, नहीं तो भारतीय कल्चर को भारत के लोग भूल गए हैं। हमारी कल्चर बहुत महान रही है, अब जो सीरियल आने लगे थोड़े थोड़े ऐतिहासिक, उससे लोग समझ रहे हैं कि हमारा महान देश, ये सचमुच भारत क्या था, यहाँ से लोगों ने क्या क्या किया है, जिसको संसार में कहीं शरण नहीं मिलती थी वो भारत में ही आ जाता था। तो गीता के दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय तो कुछ नहीं है, उसमें तो युद्ध का ऐसे ही वर्णन है, दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान है और लास्ट में कई सारे श्लोक स्थिर बुद्धि पर हैं, बहुत ही सुंदर हैं वो, अति सुंदर मैं उन्हें कहता हूँ, जो हमारे लिए बहुत सुंदर हैं। जो उसमें पूछा गया है कि स्थिर बुद्धि कौन होता है, बहुत अच्छा प्रश्न किया अर्जुन ने, वो कैसे चलता है, वो कैसे देखता है, वो कैसे सोता है, वो कैसे बोलता है। तो बहुत अच्छा अच्छा व्याख्या, 10-12 श्लोक हैं, पर उसमें ही गुह्यता आ गई। जो मनो संतुष्ट है, बहुत अच्छे शब्द हैं, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है वही स्थिर बुद्धि है। इसका रहस्य गीता के विद्वान भी नहीं जानते, इसका रहस्य है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने पर ही सच्ची संतुष्टता प्राप्त होती है। संतुष्टता दो तरह की हो गई, कई तरह की हो गई, एक संतुष्टता कि मनुष्य अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, जो कुछ है उसमें संतुष्ट, जो खाने को मिलता है संतुष्ट, जैसा घर है उसमें संतुष्ट, जितनी इनकम है उसमें संतुष्ट, एक ये संतुष्टता है। लेकिन योगियों की संतुष्टता है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से प्राप्त हुई अनुभूति, यह है सच्ची संतुष्टता। और जब ये संतुष्टता प्राप्त हो जाती है तो चित्त शांत हो जाता है। तो सभी अपने मन की भटकाव की दिशा को महसूस करें, कहाँ भटकता है ये, मन में कोई इनसिक्योर फीलिंग है, असुरक्षा की भावना, मन में कोई डर है वो भटका रहा है। बाबा को हम संपूर्ण रूप से जाने नहीं हैं, वो भटका रही है बात हमें। छोटी मोटी घरों की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, बीमारियों की चिंताएं, संबंधों में जो कटुता बढ़ती जा रही है वो हमारे मन को भटका रही है। मन को भटकाने वाली 100 बातें तो कम से कम हैं, उस पर ध्यान दें। हमें ऐसे ही व्यर्थ सोचने की आदत पड़ी हुई है, पर चिंतन की आदत पड़ी हुई है कि हम दूसरों को देखते रहते हैं, वो हमें भटका रहा है। एक माता सेवा में आई पीछे कुछ दिन पहले, तेज तराक माता, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं पर बहुत तेज, हर एक व्यक्ति से बैठे और यहाँ के सारे समाचार ले वे, कौन क्या कर रहा है, किसकी स्थिति ऐसी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आखिर सबको पता लग गया। 2 बार आना चाहती थी, सब ने मना कर दिया, इसको नहीं बुलाना। उसकी दीदी ने भी चिट्ठी देने को मना कर दिया, तुम्हारी रिपोर्ट बहुत खराब है, तुम नहीं जा सकती। फायदा हुआ? यहाँ आते हैं भगवान के घर में अपने जीवन में बहुत कुछ लेने और ऐसे कामों में लग जाएं, उसे बुद्धिमान कहेंगे? हाई फाई तो है, वो सोचते मेरे जैसा बुद्धिमान शायद दुनिया में कोई नहीं, ये सब माताएं तो भोली हैं बेचारी। ऐसे हाई फाई लोग भी दुनिया में बहुत दुखी हैं। ये गंदगी भरता है मनुष्य अपनी दिव्य बुद्धि में। सभी संकल्प कर ले, मुझे अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, मेरी इस बात पे ध्यान देना। माताएं मेरी ओर देखो, फोन की ओर नहीं, माताओं की बुद्धि जल्दी घूम जाती है। मुझे अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है, पसंद है ये बात? इस बुद्धि में भगवान को बैठाना है, साथ ले जाना है बात। इस बुद्धि में वरदान धारण करने हैं, जिससे हम विश्व का कल्याण कर सकें, दूसरों को बहुत सुख दे सकें। ये बुद्धि अब भगवान के काम आ जाए, समझ रही है माताएं? चिंतन में लाओ इसको। बहुत कुछ कर लिया 4 युगों में, अब वो करना है जो कभी नहीं किया जा सकता, केवल थोड़ा सा समय बचा है वो करने का, अब वो कर लेना है। अपने को स्वयं समझाकर बुद्धि को जहां तहां से हटाकर एकाग्र करें, इसलिए एकाग्रता का नाता एकांत से है। सभी जिनको बहुत तेज पुरुषार्थ करना हो, आप सब भट्टी में आए हुए को प्रेरणा अच्छी मिल ही गई होगी, और सबने अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग भी अवश्य की होगी। जिन्होंने नहीं की वो अवश्य कर लें, ताकि पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाए। तो मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं, रोज आधा घंटा अपने लिए अवश्य निकालें। जब आप अपने में खो जाएं, एकांत, अपने घर में ही एकांत ले लें, बिल्कुल एकांत में अपने से बात करें, अपनी गहन शांति को पाएं। आत्मा शांत स्वरूप है ना, उसमें डीप साइलेंस भरी हुई है, उस तक पहुंचे। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर बहुत शक्तियों का भंडार भी है, उसको पहचाने। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, आप सुन चुके होंगे, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा या गीदड़, सवा शेर होता है ना। अगर शेर का बच्चा अपनी शक्तियों को भूलकर कुत्तों में मिल जाए, क्या कहेंगे लोग? हम सब भगवान के बच्चे हैं, उसकी अनेक चीजें हमारे अंदर भी हैं, ये भूलना नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है, हमारे अंदर भी उसकी बहुत सारी शक्तियां समाई हैं। मिलो उनसे, उन्हें पहचानो। बाबा के पास किसी माता ने संदेश भेजा, बाबा मुझे बहुत बंधन है। किसी कन्या ने भेजा, मैं बहुत बांधेली हूं। बाबा ने पता क्या उत्तर दिया था? तुम ना, कुछ और उत्तर है, सुन के घबराना नहीं। ब्रह्मा बाबा के उत्तर बड़े पावरफुल होते थे। तुम बकरी हो क्या जो तुम्हें कोई रस्सी से बांध लेगा, शेरनी हो। और ये सुनते ही वो भाग आई, सारे बंधन एक क्षण में टूट गए। ये तो भगवान जानता था ना कि उसका क्या पार्ट है, उसे ऐसी बात कह दी कि वो सब रस्सियां तोड़ के फटाफट आ गई। मनुष्य अपनी शक्तियों को भूला रहता है तो छोटी छोटी बातों की चिंताएं करता है और मन डिस्टर्ब हो जाता है। एक बात पर और ध्यान दिलाऊं मैं आपको, और आपको याद दिला दूं, घरों में छोटी छोटी बातों की चिंताएं तो होती हैं। जाओ भाई बाहर जाके सुन लो, घरों में छोटी छोटी बातों की चिंताएं तो होती ही हैं। बाबा की एक बात अपने साथ ले जाना। 4-5 साल पहले बाबा ने कहा, बेफिकर बादशाह बन जाओ। पर कैसे बनो? मेरे को तेरे में बदलो। दूसरी लाइन, फिकर बाप को देकर फकुर ले लो। फकुर क्या? कौन मुझे साथ दे रहा है? तो मन को भटकाने वाली अनेक बातें शांत हो जाएंगी। मनुष्य छोटी बातों में चिंता करता है, और कई बातें चिंता दिलाने वाली होती हैं परिवारों में। समय अति बुरा आ गया है अंत का, कई बातें मनुष्य के मन को झकझोर कर बिल्कुल ऐसा कर देती हैं, चिंतित एकदम उदास। ये बात याद रखना, मेरे को, इसका अर्थ मैं चिंतित हूं ना, मेरी बच्ची है, शादी हुई थी, 1 साल में वापिस आ गई, इसको रखना नहीं चाहते वहां, अब क्या करूं, मेरी चिंता, मेरी है ना, तेरी करो, बाबा को समर्पित करो ये समस्या, और देखो वो क्या करता है, कैसे वो इस समस्या को हल करता है। लेकिन जरूरत इस चीज की होगी कि ये नशा हो जाए, कौन मुझे साथ दे रहा है। बाबा का एक महावाक्य और आपको सुना देना चाहता हूं, नोट कर लो, यूज करना इसे, जो हमारे मन को भटकने से रोकेगा। समस्याएं आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि मुझे साथ देने वाला कौन है। पहचाने आप भगवान के इस प्यार को, वो हमें मुक्त रखना चाहता है हर चीज से, लेकिन हम भुला देते हैं इसको। इसलिए सब कुछ भी भूल जाए, एक बात सदा याद रखना, कौन मुझे साथ दे रहा है। 1000 भुजाओं सहित सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इससे उसकी मदद मिलती रहेगी। सभी अपने गृहस्थ जीवन में रोज सवेरे एक बार ये स्मृति स्वयं को दिलाया करो, कौन मुझे साथ दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, उसने खुद कह दिया है। कितने सरल शब्द बोल दिए बच्चे, प्यार से कहो मेरा बाबा। तो और भी एक बात कह दी, बाबा बंधा हुआ है 1000 बार तुम्हें मदद करने के लिए। इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर अवसर भगवान ने अपने बच्चों को दिया है। चिंताएं न करो, ये याद करो कौन मेरे साथ है, उसको बुलाओ प्यार से और देखो वो क्या करता है। ठीक है, आप अपने घर में SP को बुला लो, भाई लोग जानते ना SP कौन होता है, उसके साथ कितनी पुलिस आ जाएगी बोलो, बहुत सारी आ जाएगी ना, चोर भाग जाएंगे या नहीं, या आपको सोचना पड़ेगा चोरों को कैसे भगाऊं। आप चीफ मिनिस्टर को बुला लो अपने घर में, कितने ऑफिसर्स और पुलिस सब आ जाएंगे, और भगवान को बुला लो, बोलो क्या हो जाएगा। फिर भगवान को जिसने बुला लिया तो सारी पावरफुल आत्माएं, सारी एडवांस पार्टी की आत्माएं, सारी शक्तियां आपके घर में आ गई, सब कुछ भाग जाएगा। लेकिन ये काम करना है, इसलिए अपने जीवन में आधा घंटा रोज एकांत। लेकिन ऐसा नहीं एकांत में बिजनेस के ख्याल आने लगे और बोर ही हो जाए कि यार छोड़ो वैसे ही ठीक थे हम तो। एकांत का आनंद सब नहीं ले पाते संसार में, बहुत तो जब एकांत में जाते हैं तो बुरे विचार ही आने लगते हैं उनको, सोचते हैं छोड़ो इस एकांत को, अपना तो वैसे ही ठीक है। लेकिन एकांत के बिना एकाग्रता होगी नहीं। जिसको ऐसी बुरी फीलिंग होती हो वो एकांत में जाकर 15 मिनट अव्यक्त मुरली पढ़ लें कोई भी, तो विचारों का सुंदर प्रवाह प्रारंभ हो जाए। तो एकाग्रचित्त होने के लिए ज्ञान का बल, त्याग का बल, चित्त में शुभ भावनाएं सबके लिए। और मैं कुछ आपको छोटी सी प्रैक्टिस बता दूं, आज ही वो अव्यक्त मुरली मैंने पढ़ी सवेरे, बहुत बहुत सुंदर। जब बाबा ने पहले पहले सबसे पहले, उससे पहले हम में से कोई नहीं जानता था उस बात को, 5 स्वरूपों की याद दिलाई। जानते हैं ना सभी 5 स्वरूपों को, उनका बहुत अच्छा अभ्यास आप रोज करें तो चित्त एकाग्र होने लगेगा। मैं 5 स्वरूपों पे आता हूं। उससे पहले मन में जितने सुंदर संकल्प होंगे मन उतना ही शांत होगा। ये सिद्धांत समझ लें सभी, मन की खुराक है सुंदर संकल्प। जैसे पेट की खुराक भोजन, हम इसको भोजन न दें तो खलबली मच जाएगी ना। मन की खुराक सुंदर विचार। मैं आपको बाबा का एक सुंदर विचार सुनाता हूं जो साकार का है, और जब बाबा ने ये कहा था तभी मुझे इसने बहुत आकर्षित किया, और शुरू के दिन 69 के मैं इस महावाक्य को दिन में बहुत याद करता था। यही जगह है सब, ये शांति स्तंभ नहीं होता था तब। बाबा ने कहा तुम देवताओं के साथ 2 युग तक रहे, फिर तुमने मनुष्यों के साथ भी 2 युग तक रहकर देख लिया, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। मेरे मन को उड़ाने वाला संकल्प था ये। आपका मन उठ गया ना, देख लिया ना मनुष्यों के साथ रह के कितना कष्ट मिला, जिनको माताओं ने बहुत प्यार से पाला, गोद में खिलाया, उन्होंने क्या दिया माताओं को। मैं बुराई नहीं कर रहा आपके बच्चों की बच्चे अच्छे भी हैं बहुतों के, लेकिन संबंधों का सुख तो मिला नहीं ना मनुष्य को, कितना कष्ट हुआ। कुछ किसी का अच्छा भी है, लेकिन भगवान का सुख, उसके साथ रहने का सुख, जिसके क्षणिक दर्शनों के लिए हम तपस्या करते थे, जिसे एक सेकंड मिलने के लिए हम घर छोड़ देते थे, राजाओं ने राजा ही छोड़ दी, अब उसने हमें सिखा दिया है सदा मेरे साथ रहो। ये परम सुख है इसमें, इसमें जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाते हैं, इसमें आत्मा पावन बन जाती है। 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, ये मन के सुंदर संकल्प, ऐसे बहुत सारे संकल्प हैं, और जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है उन्हें ऐसे कम से कम 50 सुंदर महावाक्य अपने पास अलग से लिख के रख लेने चाहिए। उनको पढ़ते रहेंगे तो मन इन सुंदर विचारों में रमण करेगा, तब एकांत में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो एकांत का भी सबको लाभ लेना है, और बहुत अच्छा 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं सरल विधि बता देता हूं। पहला स्वरूप आत्मा, अपने को आत्मा यहां न देख के सामने देखो, चित्र बनाओ, ऐसी हूं मैं आत्मा, ये मैं हूं, फिर मैं आत्मा यहां हूं। डबल प्रैक्टिस करना जरा, सामने अपने को आत्मा देखो, आत्मा से किरणें फैल रही हैं, मैं आत्मा कैसी हूं, अपने को संकल्प दो अच्छे अच्छे, फिर यहां आ जाओ, मैं आत्मा भ्रकुटियों के बीच में हूं। अच्छे संकल्प भी करेंगे और बुद्धि से इस स्वरूप को देखेंगे भी, दोनों काम करने, एकाग्रता के लिए इस बात पे ध्यान दें आप। बुद्धि नेत्र है, उस नेत्र से स्वरूप को देखना और मन में उसके लिए सुंदर विचार करना। दूसरा स्वरूप पता ही नहीं, देव स्वरूप। पता है कैसा था आपका देव स्वरूप? पता है, माताओं ने देखा है? किस किस ने देखा, हाथ उठाएंगे? बस बाकी ने देखा ही नहीं। अरे माताओं को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई टीचर बहनों से, बताना देना कि मैं टीचर की गलती निकाल रहा था, नहीं तो आपसे नाराज हो जाएंगी टीचर बहने। अपने आदि स्वरूप को खुद देखो ना, पता नहीं चला हम देवता कैसे थे, सामने खड़ा करो, सामने विजन बनाओ। मैं जब सतयुग में थी तो ऐसी थी, ऐसा था, बनाना ये खुद बनाना है। कंचन काया, चमकते हुए चेहरे, सिर पर डबल ताज, अपना स्वरूप बनाओ, संपूर्ण पवित्र संपन्नता, कोई कमी नहीं। चित्र बनाओ रोज सामने, फिर संकल्प दो ये मैं हूं। सीखे माताएं, ट्रेंड करें अपने को, केवल बाबा बाबा नहीं, ये बहुत जरूरी है। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप, भाई लोग करें मैं गणेश हूं, विघ्न विनाशक गणेश, कोई हनुमान भी कर सकते हैं। और माताएं करें मैं अष्ट भुजाधारी देवी हूं, सामने चित्र बनाओ ये हूं मैं। फिर अपने को मंदिर में देखो, सामने हजारों भक्त खड़े हैं, मेरे स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। चौथा स्वरूप ब्राह्मण में क्या याद करेंगे, हमारे साथ भगवान है, हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमें सारी शक्तियां वरदान देने आ गया है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अपने भाग्य का गुणगान करो तो संगम योगी जीवन और सुंदर हो जाए, औरों को देखना बंद हो जाएगा। और पांचवा स्वरूप ये और भी गहरा है, अपने सामने अपने फरिश्ते स्वरूप का चित्र बनाओ। मैं ये सरल विधि बता रहा हूं, जिसके अंग अंग से लाइट फैल रही है, जो धरती से ऊपर है, बिल्कुल प्रकाश की काया है, उसके ऊपर बाबा की किरणें पड़ रही हैं, ये मैं हूं। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते हुए वही स्वरूप अपना बनता जाएगा, और फिर अपने ही स्वरूप में ये पांचों स्वरूप आप देखना, आत्मा मस्तक के मध्य में, मैं ही अपने देव स्वरूप में, अपने को ही देखना, सजा सजाया स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप। सतयुग तो ऐसा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां हमारा शरीर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, धन धान कितना होगा। अब जिसको बेचारे को दो रूम का मकान है, वो सतयुग में सोचेंगे मेरा दो रूम का सोने का होगा सतयुग में, लेकिन वहां दो रूम नहीं होंगे, आपके पास लंबा चौड़ा एरिया होगा, खुली जमीन है ना। 9 लाख देवता कितने थोड़े से होते हैं, उनके लिए संसार है, जितना चाहे घेर लो, कोई बाउंड्री बनेगी ही नहीं, वहां दीवारें नहीं होंगी सतयुग में, बाउंड्री नहीं होगी, बंद नहीं होगा कुछ भी, नहीं कुछ नहीं हुआ, दरवाजा खुला है, ठीक है। सतयुग का चित्र अपने सामने लाओ। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास आपको एकाग्रचित करेगा, और ऐसे ही जिनको और अच्छा अभ्यास करना है, आत्मा को देखें, फिर बाबा को देखें, सूक्ष्म लोक में बाप दादा को देखें, तीनों लोकों की सैर कर लो, आत्मा देखें यहां, सूक्ष्म लोक में देखें बाप दादा को, परमधाम में देखें शिव बाबा को, ये करते रहो क्रम। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी अपनी ही प्रैक्टिस हमें नए नए अनुभव कराती हैं, और हमारे अपने ही अनुभव फिर हमारे लिए गाइडलाइन बन जाते हैं, फिर किसे पूछना नहीं पड़ता है। आत्मा बहुत सुंदर अनुभव में गुजरने लगती है। इसलिए सभी भाई बहने ध्यान देंगे, प्रैक्टिस अभ्यास, जो जितना अभ्यास करेंगे उतने ही सफल होंगे हर फील्ड में। अपने बच्चों को भी तो कहते हैं ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभ्यास तो खूब अच्छा अभ्यास करना, एकाग्रचित होकर इस जीवन का बहुत सुख प्राप्त करना। अब सब आए, अब तो ये सुंदर चांस मधुवन में सबको मिल ही रहे हैं और मिलते ही रहेंगे, और यही भूमि संसार में सबसे महान तीर्थ बन जाएगी, लिखा हुआ है ना पीछे, ये सबसे महान तीर्थ, और ऐसा तीर्थ कि यहाँ लोग आएंगे और कहेंगे कहाँ आ गए, ये जादू की नगरी है, यही फरिश्तों की नगरी है। वो दिन आने वाले हैं, अब दिन दूर नहीं है। आप सबने आनंद पाया, इसको कायम रखना। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।